समय सार परमाणु की 101वीं गाथा की बात आरंभ करनी है। 98, 99 और 100वीं गाथा की चर्चा में बहुत विस्तार से इस बात को बताया है कि ये भगवान आत्मा घटपटादि पदार्थों को, कर्म को, नौकर्म को, जितने भी संयोग हैं उन सभी को न तो उपादान उपाधि भाव से करता है और न निमित्त निमित्तक भाव से करता है। निमित्त निमित्तक भाव से यदि कोई करता है तो उसका उस समय का योग और उपयोग है। तो ये समस्या तो उनकी तो निबट गई झटपटादि की। अब एक बात खड़ी रह गई कि फिर आत्मा क्या करता है ना? यानी जब ये बात कहते हैं, आज तक हम जो मानते हैं कि मैंने घटपट रथ और कर्म नो कर्म शरीर आदि की क्रिया का कर्ता मैं हूं, यदि कोई इसका निषेध करे कि तू नहीं है इसका कर्ता, तो प्रश्न खड़ा होता, दो प्रश्न खड़े होते हैं कि इनको कौन करेगा और तू क्या करेगा। अपने आप ही कोई कर्मचारी हो और वो जो काम करता हो और वो कहे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, तो हमारे सामने दो समस्याएं खड़ी होती हैं कि भाई ये काम अब कौन करेगा, और दूसरी एक इसे क्या काम दें कि छुट्टी कर दें, इसके लायक दूसरा काम अपने पास है क्या, कैसे दिया जा सकता है। असली समस्या तो पहली ही है कि हमारा काम कौन करेगा। ये काम जो अभी तक करता रहा है, यदि ये नहीं करेगा तो इस काम को कौन करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। होगा हमारे पास दूसरा काम तो देंगे, हमें कह देंगे भाई तेरी नियुक्ति इसी काम के लिए हुई थी, अभी तू काम नहीं कर सकता है तो जाओ। गवर्नमेंट की पक्की नौकरी होती है तो जिस काम के लिए उसे रखा गया है, मान लो अध्यापक के रूप में रखा गया है, अब वो कहेगा साहब मैं पढ़ाने का काम नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो गला खराब हो गया है, आबादी नहीं निकलती है मुंह से, तो क्या करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यही पक्की नौकरी है तो यही कहेगी नहीं करोगे तो घर बैठो, हम क्या करें, इस्तीफा दे दो। हमारे पास दूसरा काम नहीं है, ये तो उसकी एक्स्ट्रा बात है कि वो दूसरा भी बहुत काम है और अपनी करुणा बुद्धि से उसको किसी दूसरे काम में लगा दे जिससे कि वो बेकार ना हो। लेकिन उसकी मेन समस्या तो ये है कि अब वो काम कौन करेगा और उसका इंतजाम उसे करना है। तो उसका इसके जवाब में तो उन्होंने कह दिया था तो उपादान उपाधि भाव से करता वो स्वयं होगा, है ना? स्वभाव की दृष्टि से विचार करेंगे तो त्रिकाली उपादान होगा, पुरुषार्थ की दृष्टि से विचार करेंगे तो क्षणिक उपादान नंबर एक होगा, पर्याय की दृष्टि से बात करेंगे तो उपादान नंबर दो होगा। आज सुबह जो 5 बजे गुरुदेव का टेप चल रहा था उसमें किसी ने सुना हो तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में आज कहा था कि काल माने पर्याय, बार बार एक दफे ने कई दफे कहा था कि काल माने पर्याय, अपन को बड़ा पता लगता है। उन्होंने चारों बातें बताई थी, प्रदेश माने क्षेत्र, भाव माने गुण, गुण माने भाव और काल माने पर्याय, और इनका जो संवेद रूप है वो द्रव्य, तो गुण पर्याय पर द्रव्यम है ना। तो ये जो काल है जिसे हम घड़ी घंटा और दिन कहते हैं, ये तो काल द्रव्य का यानी व्यवहार काल है, व्यवहार काल द्रव्य वाला व्यवहार काल। और हाल दो द्रव्य तो बिल्कुल अलग अलग हैं, वो काल द्रव्य हमारे परिवर्तन में भले ही निमित्त होगा, लेकिन प्रत्येक वस्तु का जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, उस काल भाव वाले काल में उस काल का नंबर कैसे आ सकता है? क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु के अंदर की चीज है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वतुष्ट है, और वो काल द्रव्य तो पर द्रव्य है। तो फिर अपना स्वकाल जिसे हम बोलते हैं ना, स्वकाल और परकाल, तो अपनी पर्याय ही वास्तव में काल है ना। अपना गुण ही अपना भाव है, अपना असंग प्रदेश ही अपना क्षेत्र है, और इन सब में रहने वाली जो वस्तु है वो अपन द्रव्य है। तो यहां कह रहे हैं कि हमारी मर्यादा तो नक्की हो गई कि क्या हुआ, हमारे में जो कार्य होगा त्रिकाली उपादान उसका स्वभाव का नियामक माने करता होगा, क्षणक उपादान नंबर एक उस विधि का करता होगा, क्षणक उपादान नंबर दो तत्समय की योग्यता उस परिकाल का पर्याय का करता होगा, किस काल में कार्य होगा इस बात का नियामक होगा। और आत्मा का तत्समय का योग और उपयोग उसमें निमित्त होगा, ये सब निबट गए वो कहते हैं। जो भी कार्य हुआ उसमें योग और उपयोग ये उसका निमित्त होगा। कल एक भाई ने पूछा था बीच में ही, कभी वो अंतरंग निमित्त बहिरंग निमित्त, तो कुमारों घड़े की बात आएगी तो हम उनमें से ही भेद डाल देंगे कि भाई ये कुमार का चक्र है, घड़ा है, ये परे है, बहिरंग है, और उसका योग और उपयोग अंतरंग निमित्त है, ऐसा अपन भेद उसमें डाल देंगे। यदि उसमें प्रेरक और उदासीन का भेद डालना होगा तो भी डाल देंगे। मेरे कहने का मतलब कोई वो बड़ी बात नहीं है, अपनी समस्या तो ये थी कि आत्मा का उससे क्या संबंध है। तो आत्मा की जो निमित्तता है वो बताना हमारा उद्देश्य था, उसकी निमित्तता बताना हमारा उद्देश्य नहीं था क्या? कि हमारा उस समय उसमें लगा हुआ योग और उपयोग ही निमित्त है। अब ये दूसरा प्रश्न खड़ा हो गया कि फिर आत्मा क्या करेगा? ऐसा लगता है वो आत्मा खाली हो गया, जैसे आत्मा को कोई काम ही नहीं है। अब ऐसा ही प्रश्न एक जगह और उठाया है, यदि तुम स्वभाव का निषेध करोगे तुम मुनियो भवंत शरणः, तुम मुनि लोग अशरण हो जाएंगे, माने उनके लिए कोई काम नहीं बचेगा। इसका मतलब प्रत्येक द्रव्य के लिए काम ही उसका उसकी शरण है। क्या क्या है थिंकिंग तो देखो, माने हमारे पास काम नहीं है तो हम शरण हो गए, काम है तो शरण है हम, फिर हमें कोई शरण की तलाश नहीं है। मुनियो भवंती शरण, मुनि अशरण हो जाएंगे। पर ऐसे ये कहा कि आत्मा फिर क्या करेगा? तो उन्होंने कहा भैया आत्मा के पास अपना पूरा काम है ना, वो खाली कहाँ है? ये तो तुम जबरदस्ती माथे पे तो करता ही नहीं था, वो जो उसे करना ही नहीं था वो थोपा था, जिस बारे में आज तक उसने कुछ किया ही नहीं है वो उसके माथे तुमने मढ़ा था। तो वो क्या काम है आत्मा का परमानेंट कि जो वो करेगा? उसका जवाब इस गाथा में दिया है। देखो इसकी उत्थान का मैंने लिख दिया है, ज्ञानी ज्ञान सैव करता साथ, कि ज्ञानी जानने का काम करेगा और क्या करना है। ज्ञानी ज्ञान सैव करता साथ है ना, कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता होगा। सारी जो जगत में प्रश्न खड़ा होता है कि फिर ज्ञानी करेगा क्या, कोई करेगा क्या, ये इसलिए होता है कि ज्ञान को हम कोई काम ही नहीं मानते। और मैं जो हमेशा कहता रहता हूं वो उदाहरण अभी नहीं देना चाहता हूं, ज्ञान भी काम है, ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। कितने नौ मकान बनाने में मजदूर तो नौकरी करता है, उसे क्या मिलता है? क्यों इंस्पेक्टर वो सुने ना आप लोगों ने सबने? अब वो नहीं कहना चाहता। क्यों कि वहां भी वो जो ज्ञान करना है वो भी कोई एक स्पेशल उसका ज्ञान, उसके ज्ञान संबंधी बात है। वो वास्तव में भी पर में उलझाने वाला काम है। वो वास्तव में फ्री का है। यहां तो कौन सा ज्ञान लेना है? क्या क्या बोला है? बोलो मत, बोलो मत, बोलने में नुकसान है। जो सहज भाव से जानने में आ रहा है उसको ज्ञान, जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं है वो ज्ञान लिया है। क्या वहां तो काम अपने माथे पे काम सवार हो गया ना? कौन सा कि वो इंस्पेक्टर ने मजदूरों को जाना और बड़े ऑफिसर ने इंस्पेक्टरों को जाना और बड़े ऑफिसर को मालिक ने जाना, तो मालिक के माथे पे कम बोझा रहता है ना? तो बोझे वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए बोधान नहीं चाहिए। क्या ये बिना बोझे वाला ज्ञान है, इसलिए उदाहरण वो सुनो। वो उदाहरण इसमें दिया है, मैं अपनी तरह से नहीं देता हूं। अब कुछ बापन पढ़ लेते हैं उसकी भी टीका, पहले गाथा पढ़ लें, टीका में दिया है उदाहरण, तो आपके ख्याल में आएगा। जे पौगल दब्बान परिणामा होंति नानयावरणा, ज्ञान मरण आदि के जो पुद्गल ज्ञान वरण आदि पुद्गल द्रव्यों के जो परिणाम हैं उन्हें यह भगवान आत्मा करता नहीं है, उन्हें जो मात्र जानता है वो ज्ञानी है। ये तो लिखा ना। अभी 75वीं गाथा से इसकी तुलना अपन करेंगे। पहले मैं जो बात आपको दिखाना चाहता हूं वो दिखा देता हूं। जिस प्रकार गोरस के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले दूध दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको करता नहीं है। एक तटस्थ भाव से जानने वाला, अब वो उदाहरण यहां पर निकल गया ना कौन सा, तो तटस्थ भाव कहां है? वो तो निकाल देगा, तुमने नहीं देखा, घाटा हो गया मालिक। वो तो जो देखने जानने वाले हैं ना, वे तो खुद आकुलित होंगे और दूसरों को आकुलता पैदा करेंगे। यहां कौन सा ज्ञानी है, कौन सा ज्ञानी जानने वाला है? कभी मैं ऐसे कर्म बांधूं और ऐसे कर्म नहीं बांधूं, ऐसे विकल्प वाला ज्ञानी नहीं है। क्या जो बने तो जान लिया, नरक गति बनी तो नरक गति जान ली, देव गति बनी तो देव गति जान ली। क्या नहीं 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 ऐसा नहीं, मैं ऐसे तो करूं, कोई चेंज हो सकता है तो चेंज करूं, और नहीं हो सकता है, गति बंध नहीं छूटता है, परिस्थिति में ही आकर्षण ही कर दूं। क्यों चरणा नहीं हो तो आपको कहेगा ना कि नहीं नहीं वो तो भैया वो तो नरक गति बन गई, अब वो तो कम नहीं हो सकता है। तुम कहो तो जेल की सजा कम हो सकती है, जो आजीवन कारावास है वो 10 साल में बदल सकता है। क्यों 10 साल वाला 2 साल में रह सकता है? तीस अगर की आयु बनी थी तो वो अभी 84,000 वर्ष की रह सकती है। मन इतनी गुंजाइश है, वो गुंजाइश नहीं है। तब तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े, नरक में तो जाना ही पड़ेगा। अब तो इसके लिए तुम ट्राई करो, और ट्राई करने वाला जानना नहीं है। ऐसे आगे बहुत आएगा, कि एक विद्यार्थी पढ़ रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है और उसको तटस्थ भाव से दूर बैठा आदमी ये जान रहा है क्या कि अध्यापक पढ़ा रहा है, ये विद्यार्थी पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि अच्छा पढ़ा रहा है कि बुरा पढ़ा रहा है, नहीं, इसमें अध्यापक को थोड़ा समझा दूं, विद्यार्थी से कह दें कि उद्यमता नहीं करें, ऐसा नहीं, ऐसा जानने वाला नहीं क्या, तो जो हो रहा है उसको जानने वाला, जिसको आप जानना ही नहीं मानते हैं। कहते 24 घंटा आपका वो काम है, बस वो करो, ये करें कि जिससे कुछ होगा ही नहीं। अरे इससे मोक्ष होगा, क्यों जो मोक्ष है ना ऊपर वाला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तेरे जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव का जो बोझा तेरे माथे है उससे यही अभी मोक्ष हो जाएगा। आया समझ में कभी आया? उस कर्तृत्व से इस जानने से और उस जानने का अंतर समझ में आ रहा क्या नहीं? यद्यपि यहां भी आत्मा को जानने की बात नहीं है, उन्हीं को जानने की बात है, और उनके जानने में धर्म हो जाएगा। बोले दुगराज जी हो जाएगा, हर के लक्ष्य से धर्म होता ही नहीं है, हमने बहुत पढ़ा है सुना है, अब तुमने पढ़ा है तो हम क्या करें। तुम वीतराग भाव से उसे जानते रहोगे तो धर्म ही है वो, आत्मा के जानने में और उसके जानने में कोई फर्क नहीं है। करुणानियोग की साक्षी चाहिए आपको? मैं कोई करुणानियोग का वास्तव में विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मेरे मतलब का करुणानियोग मुझे आता है क्या, कि जब आप थपक शनि चलते हैं कि अवसम शनि चलते हैं और वहां आठवें मनस्थान तक भी अर्थ संक्रांति व्यंजन संक्रांति और सब कहीं है, तो मैं आ जाना उस समय जब आत्मा पर उपयोग रहता है शांति जी, तब वो जो भी असंख्यात गुणी निद्रा होती होगी, जो भी निरंतर आगे बढ़ रहा है ना सपक श्रेणी वाला, वो होती है। और जब पर पे उपयोग चला जाता है उस समय वो निद्रा की रफ्तार वो ही रहती है, कम हो जाती है। क्या कहता है आपका करना नहीं? हाँ अभी जी समझ में आई बात क्या नहीं? क्या रमेश, तो इसका मतलब पर के जानने से क्या नुकसान हुआ? ज्ञान का गे कुछ भी रहे, अर्थ रहे, व्यंजन पर्याय रहे, अर्थांतर रहे, कुछ भी रहे, वो तो उसी तरह रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना, वो तो उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहता है ना, क्यों नहीं? तो पर के जानने से हानि क्या हुई? वो तटस्थ, वो टोडा मजी ने उसका जवाब ऐसा लिखा है कि उसकी वीतरागता भंग नहीं होती। वीतरागता जो उस लेवल पर जितनी होनी चाहिए वो उतनी ही कायम रहती है, इसलिए वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो यही तो तटस्थ भाव, वीतरागता भंग नहीं होना, मैं तटस्थ भाव से मेरा उपयोग करने चला गया, मिस मिनट के अंदर में लाऊं तो गया एकदम नीचे आ जाए, सबक मोक्ष नहीं हो भी जाए तो करुणानियों के हिसाब से नहीं गिरता होगा, अपने हिसाब से तो गिर ही जाएगा। करना जो आपसे इस बात तो बड़ी पक्की है, लेकिन ऐसा भाव आएगा ही नहीं मेरे कहने का मतलब उसे, ये प्रतिपाती भाव है। तूने संभालने की कोशिश करी और तेरी संभाल खत्म हुई, कैसा कैसी विचित्र बात है। तो वो वीतरागता खंडित हो गई ना, कर्तृत्व बुद्धि आ गई ना तेरी, कि जगत का जहां अपने में और पर में दोनों के परिणमन को बिल्कुल वीतराग भाव से जानना देखना धर्म है। कहां लिखा पढ़ो, जिन लड़कों ने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ लिया है, शास्त्री फाइनल वालों ने, सेकंड ईयर वाले तो अभी नहीं पढ़े, अगले साल पढ़ेंगे, तो क्यों, तो उन्होंने लिखा ना कितना कितना बढ़िया है, एक जगह बहुत अच्छा है ना, ज्ञानी जानन्नपियाम स्वपर परिणतिम उद्गलश्चाप्य जानन, ज्ञानी अपनी और परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता है और पुद्गल नहीं जानता हुआ प्रवृत्ता है। तो स्व पर की परिणति को जानता हुआ प्रवृत्ता लिखा ना, तो स्व की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तन धर्म होगा और पर की परिणति को जानता हुआ प्रवर्तन अधर्म होगा, ऐसा है? कहां से कीड़ा घुस गया हमारे दिमाग में कि पर को जानना अधर्म है और स्व को जानना धर्म है, जबकि आत्मा का स्वभाव तो जानना था। और किसको जानना? सब कुछ सर्वज्ञत्व शक्ति थी, सर्व प्रकाशगत्व शक्ति थी, हाँ कहीं कोई भेदभाव था ही नहीं, पर हमने एक नया भेदभाव खड़ा कर लिया। क्योंकि करने में तो ऐसा भेद है कि स्व का करना और पर का नहीं करना, अरे करने में भी नहीं है। अब घबराना नहीं, जरा सुनना, वो तो अब जो होता है अपने में उसी को करना कहते हैं, करने का बोझा नहीं है वहां। जैसे जानने का बोझा नहीं है ना स्व और पर का, जैसा पर का करने का बोझा नहीं है, पर अपने जो परमन के कर्ता आपन है उसका भी रंच मात्र बोझा नहीं है कि नहीं वो तो करना ही पड़ेगा, पर का नहीं अपना तो करना ही पड़ेगा, पर को नहीं तो आत्मा को तो जानना ही पड़ेगा। क्यों दूसरों के बच्चों को पाल पोसे नहीं तो अपने मुखर के बच्चों को तो पालना ही पोसना पड़ेगा। अनुवृतों में भी ये सुविधा है, क्या सुविधा है कि भाई पर विवाह करने त्वरिका गमन आता कि नहीं आता, कि दूसरों का विवाह करने की चिंता में उलझना तो अनुवृत्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग होते हैं सारी दुनिया के ठेका लेके चलते हैं, होते ना, उन्हें काम ही होता है, ऐसा नहीं कि वो उसके एजेंट हैं और उसे उन्हें कुछ पैसा मिलता है, ये उनका शौक है। और कभी कभी तो उसे परोपकार कहते हैं क्या। लेकिन हमारे शास्त्र में आज्ञा है कि अपने बच्चों की तो तुम कर सकते हो, दूसरों की नहीं कर सकते हो। क्यों क्यों रमेश जी, क्यों? कभी तो तेरी बहुत जिम्मेवारी है, जिम्मेवारी का काम तो निपटाना ही पड़ेगा, तो तेरे माथे पर जिम्मेवारी नहीं है, क्यों उसमें तू क्यों उलझता है? क्यों कि इस अनुमृत में जिसमें ये लिखा है कमल जी कि अपने बच्चों की कर सकता है, करता है मैंने करता है, और दूसरों की नहीं। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, अपने बच्चों के बच्चे अपने बच्चे हैं कि दूसरों के? उत्तर तो समझ में आ गया होगा। जब हमारी सिद्धार्थ विवाह थी, इसकी शादी होनी थी, तो हम खोजते थे, तो हमारे पिताजी हमसे पूछते थे बार बार, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, गद्दी पे बैठ के, कि क्या हुआ भैया, बेटा वहां गए थे उदयपुर लड़का देखने के लिए, तो क्या हुआ, कि तुमको क्या करना, बड़े पंडित हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है। जिसका जवाब एक शब्द में दिया जा सकता है चुपचाप बता के, ये हुआ हुआ कि नहीं हुआ, कितना ही जानना है हमें, इसको इतना और प्रश्न करने की क्या जरूरत है कि हमें क्या मतलब है नहीं मतलब है, क्यों? तो मैं कहता, देखो मैं इसलिए कहता हूं, अब तुम क्यों इस बोझे पर लेके उठे हो? मतलब शांति से तुमने निवृत्ति ली है अपना स्वाध्याय करने के लिए, तो तुम अपना पूरा स्वाध्याय करो। तुम्हारे बच्चे तो निपट गए ना, जैसे भी निपटे अच्छे बुरे, अब निपट गए ना, तो तुम क्या समझते हो कि हम अपने बच्चों का कर ही नहीं पाएंगे? अब हम अपने निपटा लेंगे, तुमने अपना निपटा दिए, कि क्या हो गया पूछ गया बोल लिया तुम। आगे पिताजी से डांट सकते हैं ना, मैंने कहा होता है कि यदि तुम हमारे बच्चों की चिंता करोगे तो हमें अपने बच्चों की चिंता करना पड़ेगी, करना पड़ेगी, आप समझ जाए ना। इसलिए हम कहते हैं कि तुमने अपने निपटा दिए, हम अपने निपटा लेंगे और बच्चे अपने निपटाएंगे, क्यों किसी के दूसरे के माथे की बात करते हो? तो इन निश्चय में तो अपना अपना करता है ही, लेकिन व्यवहार की सीमा मान लो है अपने की, तो अपने परिवार तक ही है। और अपना परिवार माने पुराने जमाने का नहीं, जो आज के जमाने का, क्या जो जैसे कहते ना कि आप गवर्नमेंट की नौकरी करोगे तो आपको रेलवे का टिकट फ्री मिलेगा और इलाज फ्री मिलेगा आपको और आपके परिवार को, तो किन किन का मिलता है हमें बोलो? आप सुनिए, जो आप पर डिपेंड है, मैं सरब जो खुद कमाते करते हैं नहीं चलेगा, उस पर नहीं चलेगा। खासकर तो बाल बच्चे आते हैं जरा माँ बाप को रखने के लिए, उन्होंने वो डिपेंडेंट शब्द डाल दिया है? वो भाई को डिपेंड नहीं मानते हैं, पागल हो तो मानते हैं। बच्चों को भी तब तक जब तक वे खुद कमाते नहीं हो, है ना, वो कमाने लगे तो फिर नहीं बच्चों को नहीं मिलेगा। उनने भी परिवार की एक परिभाषा बनाई है ना, क्यों? तो अनुवृत्ति, जब अनुवृत्ति में ये अतिचाल लिखा होगा तो नाताई दिमाग के दिमाग में भी कोई परिभाषा होगी कि नहीं? और होगी तो क्या होगी बोलो कमल जी, क्या होगी? जब वो कहते हैं ना पर विवाह करने तरीका के मनाया था पर विवाह करने, तो पर विवाह करने में कहां कहां तक लेते होंगे कि इसकी अपन को कल्पना करनी चाहिए, है ना। तो यहां ये कह रहे हैं कि ये हमें जानना तो लिया, लेकिन जानने का बोझा नहीं लिया, बोझा माइनस जानना लिया। महावीर जी ये बारीक बात है इसमें, देखो तो पढ़ते हैं जरा अपन इसकी भाषा ही पढ़ेंगे तो जरा आपको ठीक लगेगा। जिस प्रकार गोरस के द्वारा प्राप्त उत्पन्न होने वाले दूध दही और गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको करता नहीं है। क्या कह रहे हैं? गोरस जानते कैसे बोलते हैं? गाय का रस, गाय का रस ऐसा नहीं कि उसे निचोड़ के निकालना हो कि जो खून हड्डी मड्डियों का रस निकाल डाला तुम। जब गाय से दूध पैदा होता है ना उसको गोरस बोलते हैं, गाय का रस। अब उससे जो दही बना तो अपन ने यहां तो नाम बदल दिया, दूध की जगह दही कह दिया, लेकिन गोरस में उसे भी गोरस कहेंगे। फिर दही से छाछ बनी, मक्खन बना तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर उसमें से घी निकला तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर मावा बनाया तो उसे भी गोरस कहेंगे। फिर छेना बनाया तो उसे भी गोरस कहेंगे। आप समझिए, गोरस माने दूध और दूध से निष्पन्न हुए सभी पदार्थ, यानी दूध शब्द का प्रयोग नहीं करके गोरस शब्द का प्रयोग क्यों किया? अब वो कहते हैं कि दूध का जो दही बना वो किसने बनाया है? माताएं बहनें बनाती हैं, होशियार माताएं बहनें होती हैं तो बढ़िया दही जमता है, और होशियार नहीं होती हैं तो बढ़िया नहीं जमता है, क्यों? और वो जो जामन डालते हैं उसने बनाया, और बहुत हो सकते हैं ना बेचारे। दूध का तो कोई नाम लेवा ही नहीं है, जबकि वो दूध स्वयं दही रूप परिणमित हुआ है और उस दूध में ही ये स्वभाव पड़ा है कि वो लिमिटेड समय के बाद दही रूप से परिणमित हो है? तो एक क्या लिखा है, जिस प्रकार गोरस द्वारा व्याप्त उत्पन्न होने वाले दूध दही, इसमें आ गया ना अवसर लगा लेना, गोरस के ही खट्टे मीठे परिणाम हैं। खट्टा दही और मीठा दूध, उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला पुरुष, वो जमाने वाली अम्मा नहीं लेना, क्या ये जो बढ़िया जम जाए दही बन जाए, इसमें छाछ में बढ़िया अच्छा से आधे से मक्खन निकल आए, ऐसे विकल्प वाला पुरुष नहीं लेना। उन्हें तथस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा पुरुष उनको कर्ता नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल द्रव्य के ही परिणाम हैं। उन्हें तटस्थ भाव से जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ज्ञानी जीव उनको कर्ता नहीं है। अब अपना रोजी नहीं का उपदेश ही चलता है, भैया बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे मत करो, पाप बांधोगे तो नरक जाओगे, इसलिए पुण्य बांधो है क्या? नहीं नहीं साहब, वो बात तो स्मारक के बाहर होती होगी। क्या कि पाप मत बांधो, पुण्य बांधो, हमारे यहां तो कोई नहीं बांधो। सब बहुत बड़ी बात होती है तुम्हारे यहां, लेकिन तुम कौन होते हो, बांधने वाले हो नहीं बांधने वाले, ये बात कहां होगी फिर? अच्छा नहीं बांधे, अच्छा हम नहीं बांधते, कि ना तुम बांधो और ना तुम नहीं बांधो, क्या बंधे तो वितराग भाव से उसे जान लो और नहीं बंधे तो वितराग भाव से उसे जान लो। इसका नाम जानना है, इसका नाम धर्म है। इसलिए तो कहते हैं ना, टोडरमल जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया वाक्य है, मैंने उसे अलग छांट करके उसमें भी लिखा था, जब अपने पीएचडी की शोध में उस किताब के सबसे ऊपर पहले पेज पे, कि जिस भाव से वितरागता खंडित नहीं हो ऐसा जानना वो सम्यक ज्ञान है, जिस भाव से वितरागता न खंडित ना हो ऐसे सिद्धांत वो सम्यक सिद्धांत है, और जिसमें वितरागता खंडित ना हो ऐसा आचरण वो सम्यक चारित है। तीनों में वितराग शब्द का प्रयोग किया है, ख्याल है ना, वितरागता ऐसा प्रोग्राम जी ने कहा है। तो इसलिए कहते हैं कि वो वितराग भाव से जानना, इसलिए जैन धर्म को अपने वितरागाय नामा लिखते हैं बही में दरवाजे पे, सर्वज्ञाय नामा कहीं नहीं लिखा। जैन धर्म का वितरागता ये चिन्ह है, क्योंकि सारा जगत राग को धर्म मानता है ना? तो हमारा धर्म राग रूप नहीं है। अब राग में मिथ्यात्व भी आ जाता है, राग कहो चाहे क्रोध कहो, इन सब में चार चीजें आ जाती हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय। जहां टोडरमल जी ने यह लिखा ना कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय नहीं करें, उसका अर्थ कसाय नहीं करें ये नहीं है, उसका अर्थ है मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय नहीं करें। और गोमर सार में जहां लिखा है ना, योगा पैदी प्रदेशा और ठिदी अनुभागा कसाय दो होती, वहां भी कसाय शब्द का अर्थ कसाय नहीं है, वहां भी मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और कसाय। तो आप कहोगे कौन से न्याय से, कौन सी डिक्शनरी से? तो क्योंकि पांच कारण हैं बंध के, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय और योग। तो जब कसाय बोला तो उसका अर्थ समझना कसायांत, कसाय है अंत में जिसके वे सब, वो तीन कारण बंध के नहीं है, इस अर्थ में थोड़ी कहा। क्या समझे? ये बहुत बड़ी गलती है जो बड़ों बड़ों से हो जाती है। जो अन्ना जी ने बताया था क्लास में, उनने गलती की थी ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, वो उनने तो इसी आशय से कही थी जो मैं कह रहा हूं, लेकिन हमारे बहुत बड़े आचार्य ने इस बात पर बहुत वजन दिया कि मिथ्या बंध का कारण नहीं है, कसाय बंध का कारण है, क्योंकि गोमर सार में भी लिखा है कसाय से बंध होता है और मोक्षमार्ग प्रकाशक में, तुम्हारे मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी लिखा है कि जिन्हें दुखी नहीं होना हो वो कसाय नहीं करे। तो आप ये कहेंगे या नहीं, हम तो नहीं मान, माने नहीं मानने, तुम्हारे क्या होता है, क्योंकि मिथ्यात्व के गए बिना कसाय नहीं करने का कोई अर्थ ही नहीं होता, कसाय छूटती ही नहीं है, कसाय तुम करो नहीं करो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, छूटने का क्रम ऐसा है कि पहले मिथ्यात्व छूटती है, फिर अवृत्ति छूटती है, फिर प्रमाण छूटता है, फिर कसाय छूटती है, खल में है ना। इसलिए वो वही अर्थ है, इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, اور لوگ پھر ایک دم ساری دنیا میں نہ سمجھ ادھیان تو ہے ہاں لکھو لکھو لوکناتھ کا ذکی لین میں لکھو لکھو جن سکی ہونا ہوتا ہے اور کتنی اچھی بات ہے اس کا ہی ورودھ کرتے ہیں اس کا ورودھ کر رہے ہیں کہ اس کا ارتھ بتا رہے ہیں اس کا ورودھ کر رہے ہیں کہ اس کا ارتھ بتا رہے ہیں کہ اس کا ارتھ تو یہ ہے دیکھو کیا چل رہا تھا اپنا جس پرکار گورس کے دوارا ویاپت ہو کر اتپن ہونے والے دودھ دہی گورس کے ہی کھٹے میٹھے پرنام ہیں انہیں تٹست بھاو سے جاننے والا گیاتا دشتا پروش اب جو انہیں جاننا تو پر کے جاننے کا نصیب ایک بات تو دی آ گئی کہ ان کے جاننے میں کوئی ادھرم نہیں ہے ان کے جاننے کا سمرتھن آ گیا کیا انہیں نہیں جاننے والا پروش نہیں ان کو کرتا نہیں ہے ان کا کرتا نہیں ہے کبھی نے کیا کیا نہیں کیا اس کے دوران اور اسی پرکار پدگل درب کے دوارا ویاپت ہو کر اتپن ہونے والے گیانا ورنانی کرم یعنی پدگل درب ہی ان کا کرتا ہے درب کے ہی پرنام ہے انہیں تصل بھاو سے جاننے والا گیاتا دشتا گیانی جیو ان کو کرتا نہیں ہے اور جو ان کا کرتا بنتا ہے اس میں تو اپنے اجانی کہتے ہیں جانی اور اجانی کی پریبھاشا میں کوئی فرق ہو رہی ہے تٹست بھاو سے جانا تو جانی اور اس میں انوالو ہو گیا تو اجانی کنتو جس پرکار وہ گورس کو دیکھنے جاننے والا پرش گورس کو دیکھنے جاننے میں ویاپت ہو کر ماتر اسے دیکھتا جانتا ہی ہے دیکھو گورس کے جاننے میں ویاپت ہو کر گورس میں نہیں یعنی گورس میں ویاپت ہو گیا ہوتا دادا تو کیا ہوتا کہ جب اسے اپن چڑھاتے گرم کرنے کے لیے تو وہ اپنا گیان بھی گرم ہو جاتا وہ گورس کے جاننے روپ پرنام میں تو وہ جاننے روپ پرنام تو آتما کا ہی ہے تو اپنا درد اپنی پریائے میں ویاپت ہوا ہے اس میں کون سا گجب ہو گیا جب کوئی شکایت لے کر آتا ہے اپنے پاس کہ صاحب یہ لڑکا ہماری طرف بہت دیکھتا ہے گھر گھر کے دیکھتا ہے کہتے بیٹا تو اس سے کچھ چھڑخانی تو نہیں کی تیرے سے کچھ کہا تو نہیں کہنے نہیں کہا تو کچھ نہیں بولا بھی ایک شبد نہیں اور کوئی چیشٹا بھی نہیں کی چھوڑا نا دنیا اب کیا کرو گے اس میں اس کا ہی تھوڑی پورا قصور ہے تھوڑا تمہارا بھی ہے میری کیا غلطی ہے کہ تم سندر ہو نا تم سندر نہیں ہوتی تو کوئی دنیا تمہاری طرف دیکھتا ہی نہیں اب وہ تو اتنی چھوڑو یعنی کوئی تمہاری طرف کچھ تم کو کچھ بولتا ہے کہ کچھ کرتا ہے تو بولو اس کو ہم سزا اوشیہ دیں گے اب اس کی نہ پوری طرح جانچ سمبھو ہے اور نہ اس کی سزا سمبھو ہے ٹھیک ہے کہہ دیں گے تھوڑا سا ڈانٹ دیں گے خیال میں آئی نا لیکن اس سے زیادہ اس میں اور کچھ نہیں ہو سکتا کیس نہیں چل سکتا ہے نا جس پرکار وہ گورس کو دیکھنے جاننے والا پرش گورس کو دیکھنے جاننے میں ویاپت ہو کر اسے ماتر دیکھتا جانتا ہی ہے اسی پرکار گیانی دیپ بھی ان گیانا برنادک کرموں کو دیکھنے جاننے میں دیکھنے جاننے میں ویاپت ہو کر ماتر انہیں دیکھتا جانتا ہی ہے اس پرکار گیانی گیان کا ہی کرتا ہے اب یہ کہتے ہیں گیانی وہاں جو شانتی جی جھگڑا یہاں کہاں نکلتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گیان تو آتما کا ہی ہے نا کہ ہاں آتما ہی کا ہے تو پھر اس نے اسی کو جانا نا اس لیے اپنے کوئی جانا پر کو نہیں جانا صاحب اس کو جاننے والے گیان کی بات چل رہی بھائی صاحب ہم بھی گیان کریا ہی کا کرتا کہہ رہے ہیں نا اور گیان کریا آتما کی ہے تو آتما ہی کا کرتا کہا نا کیوں ہم تو اپنی پریائے کو ہی جانا ہے اور پریائے میں بھی جھلک ہے اسے ہم پر کو جاننا نہیں کہیں گے ارے بھیا ایسا تو اپنا ترکالی دھوپ بھگوان آتما بھی अपनी वर्तमान पर्याय में झलकती है, उसको जानने की प्रक्रिया भी वही है जो पर पदार्थों को जानने की प्रक्रिया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि स्व और पर के जानने में इस टाइप का हम भेद नहीं कर सकते, किसी की कहीं भी हमारे चित्त में वो भेद है तो गलत है। अब भेद क्या है कि तन्मय हो गए जानना और तन्मय हो गए नहीं जानना, और तन्मय हो गए जानने का तो अर्थ से तन्मय मन उपयोग की एकाग्रता नहीं, तन्मय का अर्थ ये मैं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक, और ये मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक, ये मैं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना उसका नाम है तन्मय हो गए जानना, और ये मैं नहीं हूं ऐसी प्रतीति पूर्वक जानना उसका नाम है अतन्मय होके जानना। इतनी सी बात है। तो ये तो बात प्रतीति की है, ये जो अंतर है वो तो प्रतीति का है, मैंने श्रद्धा का है, ये अंतर जानने की क्रिया का नहीं है और राग वाली क्रिया का नहीं है, राग की बात भी नहीं है। राग तो भूमिका अनुसार पर पदार्थों के प्रति जिस भूमिका में जितना होना होगा वो होगा, और जहां नहीं होना होगा वहां नहीं होगा। जैसे कि चौथे गुण स्थान में बहुत होगा स्त्री पुत्रादि के प्रति, पांचवे में कम होगा, छठवे सात में बिल्कुल नहीं होगा स्त्री पुत्रादि के प्रति, शिष्यादि के प्रति होगा, आगे जाकर के बिल्कुल ही नहीं होगा, तेरहवे गुण स्थान में बिल्कुल ही नहीं होगा, वो फर्क है। लेकिन तन्मय हो गए जानना और नहीं जानने में कोई फर्क नहीं है। और अज्ञानी तन्मय हो गए जानता है, अज्ञानी ये मानता है जिसको मैंने जाना ये मेरा है। इसी प्रकार अज्ञानावरण पद के स्थान पर दर्शनावरण, वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय, माने है ना आठ ही कर्म ले लेना, ये सात सूत्र और बनाना, और फिर मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ नोकर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसना और स्पर्शन, ये सोलह पदों को रखकर सोलह सूत्र का व्याख्यान करना चाहिए। और इस उपदेश से इसी प्रकार अन्य सूत्र भी बनाए जा सकते हैं, उसका भी विचार कर लेना चाहिए। अब इसमें मोह राग द्वेष वगैरह लिए ना लोग तक जैसे ना तारी, इसमें वो कहते और भी कर्मों के उदय से जो बेकार होते हैं घातिया कर्मों के उदय से, उनको भी ले लेना चाहिए और ज्यादा सूत्र बनाओ। इन्हें तो अकेले मोह कर्म के उदय से होने वाले बेकार ही लिए हैं, है ना, लोभी तक है ना, मन वचन काय तो शरीर की क्रिया की बात है। गाय के दूध और उससे बनने वाले पदार्थों को यदि एक ही नाम से कहना हो तो उन्हें गोरस कहा जा सकता है। गाय का रस माने दूध दही आदि, गोरस स्वयं ही दूध के से दही के रूप में परिणमित हो जाता है, अपने इस परिणमन का कर्ता वह स्वयं ही है, उसे दूर से तटस्थ भाव से देखने वाला पुरुष नहीं। बार बार दूर से और तटस्थ भाव से देखने वाला पुरुष दे रहे हैं, ऐसा नहीं तो वो जमाने वाले महिला और उसे पास से देखने वाला कि जम गया कि नहीं जम गया, उन आदमियों को नहीं लिया उदाहरण के तौर पर भी, है ना, क्योंकि उनको तो कर्तव्य तो काफी मान है। उस दूध को दही रूप में परिणमित होते देखने वाला पुरुष अपने उस देखने जानने रूप परिणमन का कर्ता तो है, पर दूध को दही रूप में परिणमाने का कर्ता नहीं है। आप जानते हैं कि अपने यहां पुराने जमाने में किसी लड़की को देखने जाते थे अपने यहां शादी करने में अपने लड़के की, तो उससे पापड़ सुकवाते थे कि वो पापड़ सही ढंग से सेंक लेती है, ना जले और ना कच्चा रह जाए, तो समझते हैं कि सारी रसोई में होशियार है। ऐसे ही पंजाब में दादा दही जमवाते हैं, ये अपन लोग दही जमाना नहीं जानते हैं, ये पंजाबी महिलाएं जो दही जमाती हैं, और वो कोई उनके अलग से वो होता है बर्तन, और बर्तन को भी एक उसमें अलग उसके रखने की जगह होती है, और उसमें वो दादी ऐसा दही जमता है, घी तो जम जाता है ऐसा जम जाता है और बिल्कुल खट्टा नहीं होता है, उसे पैक करके रखते हैं। अपने तो जानते नहीं कोई, आपने कहां देखा है? हमने कहां देखा, टीवी में सिनेमा में बच्चा देखेंगे। कभी वो कहते नहीं जानती हो, लो देखो ऐसे बनाओ, जमा के बता के जमा के बताती है, फिर वो दही निकाल के बताती है उसको, जैसे आप वो आइसक्रीम काटते हो ना ऐसे ऐसे काट के, और तो आपको देखने देती है बनाओ, उसमें कितना कितना गर्म करना, फिर कैसे करना, कितना दामन डालना, फिर कितनी सर्दी गर्मी में रखना, फिर कैसे रखना, उस सारी कला उसमें बताई थी, वो सिखा रही थी अपनी समझो नई आई बहू को, गैर पंजाबियों में से आई होगी बहू जो, कि तुम ये भी नहीं जानती है, समझ रहे ना। तो ऐसा आदमी नहीं लेना है उदाहरण में, क्योंकि वो तो कर्तृत्व के अभिमान में इतना चूर रहता है कि वो मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं क्या है? और आजकल तो ना पापड़ रहा ना दही रहा, आजकल तो चाय बनवा लो बस खत्म। क्यों? इसी प्रकार ना पढ़ लिख हो गया ना, इसी प्रकार कारमान वर्गणाएं ज्ञानावरणादि कर्मरूप स्वयं ही परिणत होती हैं, उन्हें जानने वाला ज्ञानी जी उन्हें जानने वाला रूप अपनी ज्ञान परिणति का तो करता है, पर उनके प्रणमन का कर्ता नहीं है, उनके प्रणमन का तो वह ज्ञाता दृष्टा ही है, कर्ता धरता नहीं। गाथा 101 में जो आया, अब अगली गाथा की बात चलेगी। ये देखो, ये जो 575वीं गाथा में ये बात कही थी ना, कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहिव परिणामम न करेदि एव मादा जो जानेदि सो हवदि नानी, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, ये मैंने इसमें लिखा है, इसमें से देखते हैं अपन क्या लिखा है। आपके पास किताब है दूसरी वाली? देखो पेज नंबर इसका है 155। इसी प्रकार का भाव 75वीं गाथा में आया है, वहां कहा है कि कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं मात्र जानता है वह ज्ञानी है, और यहां यह कहा जा रहा है कि ज्ञानावरणादि कर्मों को करता नहीं है मात्र जानता ही है वह ज्ञानी है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां अद्यपि गाथा में अकेले ज्ञानावरणादि कर्मों की ही बात की है, तथा प्रकरण के अनुसार उन सभी को लेना चाहिए जिनकी चर्चा 98 से 100वीं गाथा तक की गई है, वो सब बात में लेना चाहिए। तात्पर्य इसमें फर्क इतना है कि उसमें लिखा है तटस्थ भाव से जानने वाला, ये विशेषण इसमें विशेष जोड़ा गया है, वहां सिर्फ जानने वाला लिखा है और यहां तटस्थ भाव से। देखो ये जो समय साल में प्रतन साल में शक्तियां और नए निकाले हैं ना, तो इस नयों में शक्तियों में कि एक जानने वाला, एक करने वाला, उसे तटस्थ भाव से जानने वाला पुरुष नयों में है ना, तीन जगह है, तीन जगह वो बात है, तो वो यहां तटस्थ भाव से जानने वाली बात वो उस नए से कही गई है, ये बात है। तात्पर्य है कि ज्ञानी जीव घटपट रथादि पर पदार्थों का, इंद्रियों क्रोधादि द्रव्य कर्मों शरीर आदि नौ कर्मों को भी करता नहीं मात्र जानता ही है। इस प्रकार इस गाथा में द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि सभी आ गए। गाथा में ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की बात है और आप क्रोधादि द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं, है ना? पिछली गाथाओं में क्रोधादि शब्द का प्रयोग किया गया है, कहां ये तीन गाथाएं, और इस गाथा में ज्ञानावरणादि शब्दों का प्रयोग है। अब ये समझना, इस मामले में भी हर जगह बहुत बारीकी है, जब क्रोधादि कहते हैं तो हमारा ध्यान भावों की तरफ होता है, कसायों की तरफ होता है, क्योंकि क्रोध मोहिनी कर्म का उदय से होने वाला भाव है, ख्याल में है ना। और जब ज्ञानावरणादि कहते हैं तो हमारा पास द्रव्य की तरफ हमारा भाव होता है। ज्ञानावरणादि कहते हैं तो वो द्रव्य कर्मों के संदर्भ में कहते हैं, क्रोधादि कहते हैं तो भाव कर्मों के संदर्भ में कहते हैं। मोटा वर्गीकरण है, लेकिन यहां इस कर्ताकर्म अधिकार में बहुत बारीकी से कहीं क्रोधादि कहा और फिर भी द्रव्य कर्म लिए। खासकर इस प्रकरण में आगे पीछे से आप देखना, क्योंकि द्रव्य क्रोध भी तो होता है। अपन क्रोध शब्द बोलते हैं तो अपन समझते हैं कि क्रोध नाम का अकेला भाव, लेकिन एक जैसे ज्ञान वर्णादि कहा ना, तो अन्ना जी ने बोला था ना कि अकेले तुम आठ ही कर्म नहीं लेना, 148 प्रकृतियां हैं देवी तो कर्म है ना, अब 148 कर्मों के नाम गिनाओ, तो उसमें एक क्रोध नाम का द्रव्य कर्म आएगा। क्या हुक्म दें जी, समझ में आएगा नहीं आएगा कि नहीं आएगा? एक मान नाम का द्रव्य कर्म आएगा जो कारमान वर्णना से बना हुआ है, बिल्कुल प्योर, यानी पुद्गल का बना हुआ गुस्सा, और जिसके उदय है निमित्त, जिसमें ऐसे आत्मा के भाव को कहते हैं क्रोध, उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो हमें बहुत बारीकी से वहां देखना पड़ेगा कि वो द्रव्य कर्म की बात है कि भाव कर्म की बात है ना। अच्छा, कहां पढ़ रहे थे तुम? आचार्य अमृतचंद और जयसेन तो इस गाथा के आधार पर 23 गाथाएं और भी बनाने की बात करते हैं। इस तरह वे तो यहां क्रोधादि शब्द में भी उन सभी को समाहित कर लेना चाहते हैं जिनकी यह ज्ञानी आत्मा जानता तो है करता नहीं, तटस्थ भाव से आत्मख्याति में भाव जो अपन ने पढ़ लिया है। आचार्य जयसेन तो यहां तक लिखते हैं कि नीचे सबसे नीचे की दो पंक्तियां कि शुद्धात्मा की अनुभूति से विलक्षण रूप जो असंख्य लोक प्रमाण विभाव भाव हैं उन सभी को क्रोधादि में ले लेना चाहिए, असंख्य गाथाएं बनाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञानी आत्मा उन सभी को जानता ही है, करता नहीं है। इसे जैसे ना तारी किए हैं कि जो विशिष्ट बात कही है वो हमने इसमें ली है, ख्याल में है ना। विशिष्ट बात इसी के संदर्भ में दादा, ऐसा नहीं करने वहां करते करते कोई दूसरी बात लिख दी तो वो प्रकरण यही चल रहा है। हमने जितने भी अनुशीलन लिखे हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा है कि गुरुदेव के मान लो 25 पेज के प्रवचन हैं पर हमको एक ही पेज देना, तो वहां कोई बहुत बढ़िया बात उदाहरण दे दिया तो हम वो दे देंगे। आप जानते हैं अंग्रेजी में एक प्रेसी बनाई जाती है, माने जो एक गद्य खंड वो दे देते हैं और वो कहते हैं कि इसको आप प्रेसी बनाओ, माने संक्षिप्त में बनाओ, तो उसको बंखड़ लगभग बनानी पड़ती है ना। तो उसमें क्या छोड़ना चाहिए और क्या रखना चाहिए आप जानते हैं? प्रेसी बनाना, जो मूल मुद्दे की बात है वो आना चाहिए, जो उदाहरण वगैरह है वे छूट जाना चाहिए, और देखने में तो उदाहरण अच्छे लगते हैं। संक्षिप्त करने का तरीका ये नहीं है कि उदाहरण रख लो और बस मूल मूल सिद्धांत छोड़ दो। आपने क्या छोड़ा और क्या रखा इस बुद्धि की जांच के लिए वो प्रेसी बनवाई जाती है। तो उन्हें 20 पेजों में एक पेज कौन सा रखा कि जो इस गाथा के अर्थ को खोलने में ही सामर्थ्य रखता है। ये चुनना बहुत कठिन काम है, आपको 3 दफा पढ़ना पड़ेगा उस सारे प्रकरण को हैं? और दूसरी बात है कि जो वो कह रहे हैं हमें वो नहीं समझाना, घबराना नहीं। हम जो गाथा में जो प्रकरण चल रहा है तो उसके पोषण में उनकी बात क्या आ रही है वो कहना है एक पॉइंट, और दूसरी वो कहना है कि जिसको उनको कहे बिना लोग मानेंगे नहीं। क्या मान लो कि सबने मान लिया, मतलब हमने हम कह दी सब, और बिल्कुल एकदम सीधी सरल बात है اب وہی اس میں آ گئی تو ہم اس کو کوٹ کر کے کیا کریں؟ مانے اس سے وششٹ پروجن کی سدھی ہونی چاہیے, ہے نا؟ یعنی ہمیں وہ گرودیو جی کے 20 پیج کے پروجن نہیں پڑھے اور ہمارا وہ 1 پیج پڑھے تو بھی اس کو گاتھا کے ارتھ کے سمجھنے میں کوئی کمی نہیں رہنا چاہیے. آپ سمجھے نا, تب وہ اس کو وہ کوٹیشن کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی اٹھا رہا جو بہت اچھا لگا ہے, انہوں نے ایک ادھارن دے دیا کہ ایک مہیلا تھی, مجھے بہت وہ بیماری ہو گئی تھی, پھر وہ ایسا کہتا روم روم میں وہ ہو گئے تھے, پھر وہ کہتا ہاں میں نے کون سے پاپ کیے تھے. یہ کیا ہے, یہ کیا کریں؟ میرا تو سمجھے نا, جو اس بات کو اسپشٹ کرنے والی بات ہو وہی اس میں ہونا چاہیے, تب وہ واستو میں ہم نے جان کی وردھی کی ہیتو کی بات کری ہے.